हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब आर्यन का खुद पर इतना ज्यादा आत्मविश्वास देखकर झलक जज्बाती होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि उस वक्त आर्यन को जवाब दे तो क्या दें। फिलहाल गहरी सांस लेते हुए उसने इस बारे में सोचा कि अभी के लिए उसे आर्यन का साथ मान लेना चाहिए। वैसे भी आर्यन उसका काफी अच्छा दोस्त है, जो काफी ज्यादा मुसीबत में उसके साथ रहा है। उसने हमेशा उसकी मदद की है। तो ये सोचकर झलक ने आर्यन को हाँ कह दिया और वहाँ पर काम करने का इशारा किया था, और फिर वो पूरी तरह से काम पर जुट गई थी। पहली बार आर्यन और झलक ने मिलकर अपनी कंपनी में काफी ज्यादा मेहनत की थी और काफी हद तक प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे। फिलहाल उन्हें काम करते हुए पूरे शाम के 6 बज चुके थे, और इस बीच में झलक और आर्यन दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके थे। तब आर्यन ने झलक की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो फटाफट से कहीं चलकर डिनर करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़ दूंगा। अब झलक आर्यन की ये बात सुनकर झलक को कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि वाकई वो काफी ज्यादा थक गई थी और उसे भी बहुत जोरों से भूख लगी थी। वैसे भी झलक काफी ज्यादा फूडी थी, खाने में तो उसकी जान बसती थी, और वो खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए वो आर्यन के साथ चली गई थी। लेकिन आर्यन उसे रेस्टोरेंट के बजाय सिद्धार्थ खुराना के ही बार नाइट बार में ले गया था, क्योंकि वो उनकी फेवरेट जगह थी और साथ ही साथ वहाँ पर उसके दोस्त भी मौजूद थे। तो झलक सबसे मिलकर काफी खुश हुई थी, और जल्दी वहाँ पर उन्होंने अच्छे से खाना वगैरह खाया, और तब आर्यन ने झलक को कुछ अल्कोहल पीने के लिए दिया। झलक ड्रिंक नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसने आज सेलिब्रेशन के तौर पर थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी, और अचानक उसका दिल घबराने लगा और वो आर्यन की ओर देखकर आहिस्ता से बोली, मुझे लग रहा है कि मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं थोड़ा बाहर फ्रेश हवा लेकर आती हूँ। तब आर्यन उसे रोकने ही वाला था, क्योंकि वो भी एक और ड्रिंक करने के बाद उसके पीछे ही आने वाला था, लेकिन तब तक झलक बाहर निकल गई। अब जैसे ही वो बाहर निकली, उसने आसपास अच्छी तरह से देखा। उसे काफी ठंडी और फ्रेश हवा महसूस हुई, तो उसे काफी अच्छा लग रहा था। झलक ज्यादा नशे में नहीं थी, लेकिन अब उसे बाहर निकले हुए कुल 3 से 4 मिनट हुए थे कि तभी किसी ने आकर उसके पीछे से सर पर वार कर दिया था और झलक बेहोश हो गई। वहीं दूसरी ओर आर्यन को जब झलक का इंतजार करते हुए 15 से 20 मिनट से ज्यादा हो गया, वो हैरान हो गया और फटाफट से वो भी बाहर की ओर आया, लेकिन उसे झलक का नाम और निशान नहीं मिला। अब तो आर्यन को काफी हद तक डर सा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का यकीन था कि जब से झलक ने ब्लॉगर को ओबेरॉय परिवार के सीक्रेट्स भेजे हैं, तब से वो उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। तो तभी आर्यन को एक अजीब सा डर सताने लगा, और वो फटाफट से वहाँ के मॉनिटरिंग रूम में गया और उनसे रिक्वेस्ट की वो थोड़ी देर पहले की फुटेज देखना चाहता है। लेकिन मॉनिटरिंग रूम जो कि चेंज हो चुका था, पहले झलक के दोस्त वहाँ मॉनिटरिंग रूम संभाल के थे, लेकिन अब उनकी ड्यूटी वहाँ से चेंज हो चुकी थी। तो उन नए स्टाफ ने आर्यन को साफ साफ इनकार कर दिया कि वो उसे कोई फुटेज नहीं दिखाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर झलक को किसी और लोगों ने नहीं, बल्कि झलक के अपने पिता ईशान ओबेरॉय के कहने पर ही अगवा किया गया था। उसने उन्हें ऐसा करने के लिए बोला था, और झलक को अगवा करने वाले रमेश और सुरेश थे। जब झलक डिलीवरी गर्ल का काम किया करती थी, तब झलक के उनसे एक दो बार मुठभेड़ हुई थी, क्योंकि झलक किसी से भी लड़ जाया करती थी, एक दबंग लड़की थी। लेकिन अब वो दोनों झलक को कार में डालकर उसे अनजान जगह की ओर ले जा रहे थे। वो जल्दी ही उसे एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ले गए थे। तब तक झलक को होश आ गया था, लेकिन वो सोचने लगी कि आखिरकार उसके साथ यहाँ पर क्या होने जा रहा है, आखिर ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। उनकी आवाज़ों को सुनकर वो इतना तो पहचान चुकी थी कि ये दोनों लोग रमेश और सुरेश वही भाई हैं जिनके साथ झलक का एक बार पंगा हुआ था। फिलहाल अब झलक आंखें बंद करके सोचने लगी थी कि आखिरकार उसे इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए। वहीं रमेश सुरेश से कह रहा था, बड़े साहब ने जो करने के लिए बोला है कि इस लड़की का नाम निशान मिट जाए और किसी को भी इसके बारे में कानों कान खबर न लगे, और इसकी मौत इस तरह से होनी चाहिए, ऐसा लगे जैसे कोई एक्सीडेंट हो। फिलहाल झलक को कोई हैरानी नहीं हुई कि उसके अपने पिता ने ही उसे मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। झलक मन ही मन उन बेवकूफों पर हंस रही थी जो कि उसे बेहोश समझ रहे थे। तभी उस वक्त वापस रमेश ने सुरेश को आइडिया दिया, हमें इसके ही अपार्टमेंट से लेकर जाना चाहिए और वहां पर इसका गला घोंटकर मार देनी चाहिए और फिर वहां पर हम इस तरह से आग लगा देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और सबको लगेगा कि ये लड़की आग में जलकर मर गई है। कहीं ना कहीं वो झलक के मुंह पर ही उसे मारने का प्लान बना रहे थे और झलक सारी बातें उनके सुन रही थी और मन में उन बेवकूफों पर हंस रही थी। वहीं दूसरी ओर ईशान ओबेरॉय के चेहरे पर आज चमक थी। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी बहुत देर में इस बात की खबर मिलने वाली थी कि झलक जलकर इस दुनिया में नहीं रही। अब अपने पति को इतने आत्मविश्वास से बैठे हुए देखकर नैना ओबेरॉय हैरान हो गई और बोली, आखिरकार आप इतने बेफिक्र होकर शांति से कैसे बैठ सकते हैं? उस लड़की ने हमारी बेटी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करने की कसम खा ली है। आखिर आप उसे मारना क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा होता कि उस लड़की को हम बचपन में ही मार देते तो आज हमें ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। इस वक्त नैना गुस्से से उबल रही थी। कहीं न कहीं जब से उसने ये सुना था कि उर्वशी खुराना झलक को अपनी धर्मपोती बनाना चाहती है तो उन्हें लगने लगा था कि शायद अब आकांक्षा से उसकी जगह छिन जाएगी। इसीलिए वो झलक को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वेल, मिस्टर ईशान ओबेरॉय ने बड़ी ही आंखों में नैना को शांत रहने का इशारा किया और खुद आराम से सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। अब अपने पति को इतना शांत देखकर कहीं न कहीं नैना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। आखिरकार अपने पति के साथ वो पिछले 25 सालों से रह रही थी तो वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति कब क्या कर सकता है। वहीं दूसरी ओर आर्यन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रह रहकर उसे झलक की चिंता भी हो रही थी, इसलिए उसने गुस्से में सिद्धार्थ खुराना के पास फोन मिला दिया था। जिंदगी में पहली बार आर्यन ने सिद्धार्थ को फोन किया था। सिद्धार्थ जो कि अपनी दादी के साथ अस्पताल में मौजूद था। अब जैसे ही आर्यन का फोन आया वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने कानों पर फोन लगा लिया था। दूसरी तरफ से आर्यन गुस्से में बरसते हुए चिल्लाकर बोला, आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या सिस्टम है ये तुम्हारे ऊपर का? मैं तुम्हारी टीम से बोल रहा हूँ कि मैं कुछ जरूरी फुटेज देखना चाहता हूँ, मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए। तब सिद्धार्थ खुराना आर्यन की इतनी गुस्से वाली आवाज सुनकर पहले तो भड़क गया, लेकिन फिर खुद को शांत करके सख्त लहजे में बोला, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? शायद तुम भूल रहे हो, ये बार शहर का सबसे फेमस बार है और यहाँ पर सब अमीर लोग आते हैं और सबकी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ होती है, सबकी अपनी कुछ प्राइवेसी होती है। इस तरह से हम सीसीटीवी फुटेज कैसे दिखा सकते हैं? हाँ, ये बार के रूल रेगुलेशन के खिलाफ है।
अब तो आर्यन ने उसकी बात सुनकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और थोड़ा सा तेज आवाज में चिढ़ते हुए बोला, जस्ट शट अप। झलक मेरे साथ यहाँ इस नाइट बार में आई थी और पिछले आधे घंटे से वो मुझे कहीं मिल नहीं रही है। अगर झलक को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारे इस नाइट बार को तो आग लगा ही दूंगा सिद्धार्थ खुराना, साथ ही साथ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा।